ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा, प्राकृतिक विनाश के प्रति समय रहते सचेत हो जाने की है जरूरत। आगामी चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में संपन्न करने में सहयोग करने का संचार माध्यमों से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया ने किया आग्रह। और यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में मानवीय सहायता ले जा रहे काफिले पर किए गए रूसी हमले में 23 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने युवाओं से जनता के पक्ष में राजनीति करने का आग्रह किया। 153वीं गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर नेपाल चरखा प्रचारक गांधी तुलसी स्मारक महागुठे द्वारा आज काठागारी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलते हुए कमजोर लोगों के पक्ष में राजनीति करने का युवाओं से अनुरोध किया। ये कहते हुए कि 21वीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन से मानव सभ्यता को खतरा है, उन्होंने कहा कि विश्व और देश संकट में होने के बावजूद देश के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि दुखद है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ यादव ने कहा कि मानव जाति के कारण प्रकृति विनाश के कगार पर है, जिससे दिन ब दिन विश्व में खाद्य और ईंधन का संकट बढ़ रहा है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने स्वनियमन और स्वनियंत्रण की मान्यता पर ध्यान देते हुए चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने में मदद करने का संचार माध्यमों से आग्रह किया है। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते को होने वाले चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग में स्थापित प्रेस ऑफिस का आज उद्घाटन करते हुए प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया ने ऐसा आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आयोग की गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने, मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करके उन पर निगरानी को व्यवस्थित करने के लिए प्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय आयोग की स्थापना से सूचनाओं और संदेशों को आम मतदाताओं, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने में अधिक सहयोग मिलेगा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया ने कहा कि चुनाव के दौरान साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को कम करने के लिए आयोग के प्रेस ऑफिस में एक संपर्क व्यक्ति के रूप में संबंधित निकाय के प्रतिनिधि को भी रखा गया है। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ने बताया कि कार्यालय से मीडिया और सोशल मीडिया तक सूचना प्रवाह के लिए एक द्वार प्रणाली लागू की गई है और आयोग द्वारा भेजी जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं और संदेशों के प्रभावी ढंग से लक्षित वर्ग तक पहुंचने की उम्मीद की गई है। बता दें कि प्रेस कार्यालय उस व्यक्ति को आदेश देगा जिसने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर भ्रामक अफवाह, गलत सूचना, दुर्भावनापूर्ण अभिव्यक्ति और नॉन ऑफिशियल जानकारी पोस्ट की है। सोशल मीडिया से ऐसी सामग्री, जानकारी को तुरंत हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप से पत्र भेजा जाएगा। ऐसे कामों को अंजाम देने वालों के ऊपर कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने और इस तरह की कार्रवाई से संबंधित जटिलता पाए जाने पर निर्देशक समिति के समक्ष राय सहित पेश करने की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन कार्यालय गोरखा ने अनुमति प्राप्त हथियार तत्काल जिला प्रहरी कार्यालय को सौंपने का अनुरोध किया है। प्रमुख जिला अधिकारी शंकर हरि आचार्य से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी मार्गशीर्ष 4 गते को होने वाले चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी अनुमति प्राप्त हथियार पुलिस प्रशासन को सौंपने का अनुरोध लोगों से किया गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय की शांति एवं सुरक्षा और अपराध नियंत्रण महाशाखा से प्राप्त पत्र के अनुसार जिला प्रशासन कार्यालय ने हथियार सौंपने का अनुरोध किया है। नवरात्रि के 5वें दिन आज स्कंद माता की पूजा आराधना की गई। हर साल आश्विन शुक्ल पंचमी यानी दुर्गा पक्ष के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। स्कंद माता के बारे में पौराणिक ग्रंथों में एक कहानी वर्णित है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती श्रीमद देवी भागवत और अन्य देवी स्तोत्र के मंत्रों का पाठ उस स्थान पर किया जाता है जहां अपवित्रता होती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के अवसर पर देवी की पूजा आराधना करने से ज्ञान, शक्ति और धन की प्राप्ति होती है। इसी आधार पर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक हर साल वैदिक सनातन धर्मावलंबी देवी दुर्गा की विशेष पूजा करते हैं। दशहरे की शुरुआत के साथ ही महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सरलाही, रोहतक, बारा, परसा सहित मध्येश के सभी जिलों और भारत के सीतामढ़ी, मधुबनी, लगायत जिलों में झिझिया नृत्य शुरू हो चुका है। बता दें कि सुख समृद्धि और पारिवारिक सुरक्षा के लिए लोक अनुष्ठान के रूप में दशहरे के दौरान झिझिया नृत्य करने का प्रचलन है। इस नृत्य में खासकर महिलाएं जलते हुए दिए रखे हुए कलात्मक छेद वाले घड़ों को अपने माथे पर रखकर बड़े ही कर्तव्य के साथ नाचती और झिझिया गीत गाती हैं। झिझिया नृत्य के साथ एक समासा बंध जाता है। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा ने सिंह दरबार स्थित संघीय संसद भवन का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश किया है। निर्माणाधीन संघीय संसद के विभिन्न भवनों का आज स्थलगत अवलोकन करते हुए अध्यक्ष तिमल सिन्हा ने निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। बता दें कि अब तक महज 60% निर्माण ही पूरा हो सका है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भुषाल ने त्योहारों के दौरान नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कोई कमी न होने देने का निर्देश किया। आज मंत्री भुषाल ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण में कार्यरत उच्च स्तरीय कर्मचारियों को मंत्रालय में बुलाकर आम लोगों के लाभ के लिए काम करने और निर्बाध बिजली सेवा आपूर्ति करने का निर्देश किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि डेंगू नियंत्रण पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आज काठमांडू क्षेत्र नंबर 4 द्वारा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में महामंत्री थापा ने कहा कि पर्व त्योहारों के समय में डेंगू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, इसलिए इसके नियंत्रण पर सरकार को ध्यान देना होगा। इसके लिए उन्होंने सरकार से विशेष अभियान संचालन करने की मांग भी की। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कर्णाली के प्रदेश प्रमुख तिलक परियार की अनुपस्थिति अवधि भर के लिए उनका कार्यभार लुम्बिनी के प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन को सौंपा है। बता दें कि कर्णाली के प्रदेश प्रमुख परियार इसी आश्विन के 19 और 20 गते कनाडा के ओटावा में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की सिफारिश पर लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख को यह जिम्मेदारी सौंपी है। ये बात राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य द्वारा जारी किए गए बयान में उल्लिखित है। झापा की मेचीनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित विजय राजवंशी के घर में आज आग लग गई, जिससे 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कांकरभिट्ठा के डीएसपी ज्ञान कुमार महतो से मिली जानकारी के मुताबिक रसोई घर में एलपी गैस लीक होने से लगी आग के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में मानवीय सहायता ले जा रहे काफिले को निशाना बनाकर किए गए रूसी रॉकेट हमले में 23 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। आज हुए इस हमले में 28 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। काफिले में शामिल लोग रूस के कब्जे वाले हिस्से में अपने रिश्तेदारों को लेने और मानवीय सहायता पहुंचाने गए थे। हालांकि रूस की ओर से तैनात किए गए एक स्थानीय अधिकारी ने इस जानलेवा हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। यह हमला तब हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के उन हिस्सों पर जनमत संग्रह करा रहे हैं जहां रूस का कब्जा है। इन इलाकों में ज़ापोरिज़िया के अलावा दोनेत्स्क, लुहांस्क और खेरसोन शामिल हैं। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह कराया और दावा किया कि यहां के लोग रूस के साथ रहना चाहते हैं। यूक्रेन ने रूस के इस कदम की निंदा की है। इसी बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज इस बात का ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के 4 इलाके दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और ज़ापोरिज़िया अब रूस का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन के 4 इलाकों के लोगों ने अपना फैसला कर लिया है। जनमत संग्रह के नतीजे जग जाहिर हैं। लोगों ने चुनाव कर लिया है। हालांकि रूस के नियंत्रण वाले यूक्रेन के इन 4 इलाकों में जनमत संग्रह को पश्चिमी देशों और कानूनी विशेषज्ञों ने अवैध करार दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जनमत संग्रह के नतीजे उन लोगों के प्राकृतिक अधिकार को दर्शाते हैं जिन्होंने इसमें अपना वोट दिया है। पुतिन ने अपने संबोधन में इतिहास का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वे चाहते हैं कि कीव और पश्चिमी देशों के लोग ये बात सुन लें कि डोनबास क्षेत्र के लोग अब हमेशा के लिए रूस के नागरिक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस अपनी जमीन की हर तरह से हिफाजत करेगा ताकि उनके लोग सुरक्षित तरीके से रह सकें। रूस इन इलाकों के गांवों और शहरों का पुनर्निर्माण करेगा और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आज धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 19 बताई गई है। अफगानिस्तान के एक जर्नलिस्ट बिलाल सरबरी के हवाले से बीबीसी ने बताया कि 100 स्टूडेंट्स की मौत का दावा किया गया है। सरबरी के मुताबिक तालिबान ने हॉस्पिटल के मालिक को धमकी दी है कि वो कोई भी जानकारी मीडिया को लीक न करे। सरबरी ने काबुल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से बातचीत की। हॉस्पिटल के मालिक ने उनसे कहा, हमें तालिबान ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह की जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। मीडिया को सिक्योरिटी या हमलों की जानकारी बिल्कुल न दें। हॉस्पिटल में कोई भी कैमरा या जर्नलिस्ट अंदर नहीं आना चाहिए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा, प्राकृतिक विनाश के प्रति समय रहते सचेत हो जाने की है जरूरत। आगामी चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में संपन्न करने में सहयोग करने का संचार माध्यमों से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया ने किया आग्रह। और यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में मानवीय सहायता ले जा रहे काफिले पर किए गए रूसी हमले में 23 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।